چلے یہ پرندے حوصلے اب جوان ہیں اڑ چلے یہ پرندے حوصلے اب جوان ہیں نہ رکے گا یہ کاروان دور ہم سے نہیں اب آسمان ہے قدم سے قدم مل چلے آپ ہیں ساتھ میں جب چلے ہے امنگ ہے اللہ ایک نئی سوچ نیا وشوا ایک نئی سوچ نیا وشوا
بجھ جائے شمع تو جل سکتی ہے بجھ جائے شمع تو جل سکتی ہے کشتی حدے طوفان سے نکل سکتی ہے مایوس نہ ہو ارادے نہ بدل تقدیر کسی بھی وقت بدل سکتی ہے بدل رہی ہیں ہماری دھارنائیں ہماری مانیتائیں ہفتے در ہفتے جب ہمیں نیا اور انوٹھا گیان مل رہا ہے اس کاریکرم کے ذریعے نمسکار میں ہوں امیت وادھوا نئی سوچ نیا وشواس اس کاریکرم میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستوں کاریکرم کی پچھلی کڑی میں ہم نے کھان پان سمبندھت وشے پر چرچا کی اور بڑے ہی ترک پورن اور یکتی یکت ریتی سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ماساہار ہمارے شریر کے لیے اپیکت نہیں ہے کھان پان سمبندھت چرچا کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک بار پھر اس منچ پر آمنترت کرتے ہیں گلوبل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ماؤنٹ آبو سے کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ انٹینسوسٹ ڈاکٹر سچن جی کو داتا جی نئی سوچ نئے وشواس کاریکرم میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے پچھلی کڑی میں آپ نے بہت ہی روچک جانکاری اور بہت ہی اہم جانکاریاں دی ہیں اور ہمیں بتایا کہ ماساہار ہمارے لیے انوپیوکت ہے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ویوسائے ماساہار سے جڑا ہوا ان کا پیشہ ہی یہی ہے تو کیا وہ برہما کماری سنستھا سے جڑ سکتے ہیں
ہاں جی اس سنستھا سے جڑنے کے لیے کسی پیشے کا ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے سمبندھ نہیں ہے کسی بھی پروفیشن کا ویکتی ہو اس سنستھا سے اوشیہ جڑ سکتا ہے یہاں تک کہ وہ کسی بھی کاسٹ کا ہو کوئی بھی ریلیجن کا ہو کسی بھی دیش کا ہو کہیں کا بھی ہو ایسی کوئی نیم نہیں ہے ایسا کوئی نیم نہیں ہے کہ بھائی یہ پروفیشن کا ہے تو اس سنستھا سے نہیں جڑ سکتا
جی جی جی
تو جڑ تو سکتا ہے
لیکن پھر کیا اسے سنستھا میں آنے کے بعد اسے اپنے اس ویوسائے کو چھوڑنا پڑے گا
کس پرکار کے ویوسائے کی آپ بات کر رہے ہیں
میں سیدھے ماساہار کے پیشے کی بات کر رہا ہوں
جی دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ماساہار سے کیا کیا ہوتا ہے
ہاں جی
اس میں سمجھ کی بات ہے ہمیں تو پہلے یہ جاننا ہے کہ ماساہار سے کیا کیا ہانیاں ہونی ہے ہمارے من میں ایک جو سادھارن سا سنکلپ ہے اس کو تھوڑا درڑ سنکلپ میں پریورتن کرنا ہے
جی
جیسے میرا ایک متر ہے ابھی یہ मित्र है जो उसका जो पूरा परिवार इस संस्था से जब जुड़ा तो ये जो मित्र है उसके जो पिताजी थे
जी।
उनकी एक चिकन की शॉप थी
जी।
जो कि उनके पूरी आमदनी का एकमात्र साधन था
जी जी
पूरा परिवार उसी शॉप से चलता था
हाँ
अभी ये जो व्यक्ति है इसको ये संस्था का परिचय मिला वो इस ज्ञान में आया उसने यहाँ की बातों को सुना यहाँ के ज्ञान को समझा اور اسے یہ ریئلائز ہوا کہ ابھی مجھے اپنا جیون پریورتن کرنا ہے تو یہاں پہ اس نے پھر ماساہار کی بات بھی سنی کہ ماساہار سے ہونے والی کیا کیا ہانی ہے جو کہ ہم نے پچھلے کڑی میں بہت ہی وستار سے یہاں پر چرچا کی ہے
جی
تو انہوں نے دیکھو کوئی بھی چیز کرنے کے لیے ایک درڑ سنکلپ کی آوشیکتا ہوتی ہے
ہاں جی
اگر جیسے اسی ویکتی کی جو بات کر رہا ہوں میں جو ہمارے انکل تھے تو انہوں نے تو درڑ سنکلپ کر لیا پرنتو اس پروفیشن کو چھوڑنے میں انہیں کچھ سمے لگا ترنت تو نہیں چھوڑ سکتے تھے
ہاں جی
تو انہوں نے دھیرے دھیرے اپنا ایک دوسرے طرح کا ویوسائے چالو کیا फिर धीरे धीरे इसको कम करते गए और एक समय आया कि कुछ सालों में इसे पूर्ण तरह बंद कर दिया। तो ये एक समझ की बात है। और जो भी बड़े डिसीजन हम जीवन में लेते हैं वो तो जैसे कि कहते हो संकल्प के ऊपर है सब कुछ, एक संकल्प की दूरी पर है वो बस। तो हम सोच ले मन में, दृढ़ संकल्प कर ले कि हमें किसी चीज से छूटना है, तो ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक सकती है, और नए नए मार्ग भी खुल के हमारे सामने आ जाएंगे।
और वैसे भी अच्छी राह पर चलो तो ईश्वर
हमको हमेशा मदद करता ही है। जी जी।
पर एक और सवाल है, जैसे दृढ़ संकल्प से आपके परिचित ने पूरा व्यवसाय बदल दिया
जी,
मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मांसाहार खाने सेवन करने की आदत पड़ी
जी, जी जी।
अगर वो छोड़ना चाहें इस बात को समझने के बाद तो वो कैसे छोड़ सकते हैं?
देखिए, इसमें ऐसा है, किसी भी चीज को हमको जब छोड़ना है तो सबसे पहले तो हमको पूरी तरह समझना पड़ेगा कि हमें क्यों छोड़ना है
जी।
तो ये जो साधारण सा संकल्प है जो आपने कहा और हमने भी डिस्कस किया कि उसको हमको दृढ़ संकल्प में परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति है जिसे कि मांसाहार बहुत पसंद है, परंतु जब भी जैसे कि वो मांसाहार की प्लेट सामने आती है
जी,
तो उसे वो याद करना है कि कौन से ये जानवर है, न जाने कौन से जानवरों को काटा गया, उनकी वो चीख वो पुकार, कि जब जब वो मांसाहार देखे तो सारा उसके आंखों के सामने जैसे आ जाए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारा डाइनिंग टेबल है वहां पर हम अलग अलग जैसे स्लोगन लगा के रख सकते हैं कि मांसाहार सभी दुखों का कारण है, सभी रोगों का जैसे भंडार है। इस तरह से अपने घर में भी इस तरह की वो जागृति लाए, बार बार अपने आप को स्मृति दिलाए कि भाई इससे हमको छूटना है, वो कैसे छूटे, इस पर वो और चर्चा करे, डिस्कस करे। ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स है, वहां पर हमारी बहनें हैं, उनके साथ में थोड़ा इस तरह से डिस्कशन करे तो उनकी इस बारे में कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है, बजाय इसके कि हम अपनी इच्छाओं को दबा दे। एक होता है दमन, जिसमें हम दबा देते हैं, और एक होता है उसको पूरी समझ और फिर अपने आप वो छूट जाता है। तो दबाने की बात नहीं है, अगर जो चीज हमको संपूर्ण रीति से समझ में आ गई कि ये मेरे लिए भोजन है ही नहीं, जिसको जैसे हमने कैंसिल कर दिया
जी,
तो वो स्वतः ही छूट जाएगी।
उस समझ को और विकसित करना,
और विकसित करना
है उसको। अच्छी स्मृतियों को लाना, क्या बात है। डॉक्टर साहब, आपकी बातें हमारी समझ को विकसित कर रही हैं खान पान से संबंधित, और हमारे बीच में बहुत सारे दर्शक भी मौजूद हैं जिनके खान पान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए इनसे इनके प्रश्न सुन लेते हैं।
मैं कोलकाता गुरुनगर से हूँ, मेरा नाम जयंती है। मेरा एक क्वेश्चन है कि लहसुन प्याज शाकाहारी है, इनका उपयोगिता भी बहुत है, लेकिन इनको यूज करने में बुरी बात क्या है?
जी देखो, जैसे मैंने पिछली कड़ी में कहा था कि अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव है, और अन्न जो है उसके कहा जाता है तीन प्रकार के दोष है। एक होता है जाति दोष, एक होता है आश्रय दोष, एक होता है निमित्त दोष। तो ये जो जाति दोष है, इसमें अन्न की तीन कैटेगरीज बताई जाती है। एक होता है सात्विक अन्न, एक होता है राजसिक, और एक होता है तामसिक। तो लहसुन और प्याज, इसको बॉटनी में एलियम ग्रुप्स, एलियम फैमिली ऑफ द प्लांट्स, उसमें आता है ये एलियम, जिसको कहते हैं एलियाशिस ग्रुप ऑफ द वेजिटेबल्स। तो ये जो है, इनकी जो कैटेगरी है वो है तामसिक। अभी जितने भी तामसिक अन्न है, जैसे ही हम ये तामसिक अन्न का सेवन करते हैं, हमारे अंदर उसी तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, राजसिक और तामसिक तरह के जो भाव है, जिसमें क्रोध है, एग्रेशन है, या फिर बहुत ही आलस्य है, प्रमाद है, निद्रा है, ये इस तरह के निगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर एंट्री करती है। तो प्याज और लहसुन से इस तरह के, और आपने देखा होगा कि भारत में कितने सारे त्योहार है, कितने सारे व्रत यहाँ पर रखे जाते हैं। कभी आपने ये सुना कि किसी देवताओं के आगे कभी प्याज और लहसुन का भोग लगाया जाता है?
कभी
नहीं। कभी आपने ये देखा है कि कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, और जब उपवास तोड़ता है, पहले एक बार भोजन करता है, उस समय भी प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करते? या कोई तीर्थ यात्रा में कोई जा रहा है, तभी भी प्याज लहसुन का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये जो प्याज लहसुन है, शरीर में जाते ही जैसे उत्तेजना उत्पन्न करता है। यहाँ हमारा लक्ष्य है राजयोग, जिससे कि हम आत्मा का शुद्धिकरण कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपने विकारों को शांत कर रहे हैं, अपने चित्त को शांत कर रहे हैं। तो ये जो चीजें है, जैसी आती है फिर से हमको देहभान में लाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में लाती है, जबकि हम लक्ष्य रख रहे हैं सोल कॉन्शियसनेस का। तो ये जो बातें है हमारे मन में ऐसे उद्विग्न, हमारे चित्त को उद्विग्न करती है, एजिटेटेड करती है, एग्रेशन लाती है। दूसरी एक बात प्याज और लहसुन के बारे में, कि आपने देखा होगा प्याज और लहसुन का जो स्मेल है वो कैसा होता है, क्या बहुत अच्छा होता है? दुर्गंध होता है।
जी जी जी।
मुंह से दुर्गंध आती है, जो भी व्यक्ति प्याज लहसुन खाते हैं उनके मुंह से दुर्गंध आती है। अच्छा, ये तो हो गया आध्यात्मिकता की रीति से। अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं तो एक रिसर्च, काफी रिसर्च हुआ है आजकल। आप तो ये भी जानते हो कि मेडिकल तो कहता है ये बहुत अच्छा है।
हाँ जी,
आप कहीं इसके आर्टिकल्स भी आते हैं, परंतु हाल ही में बहुत सारे संशोधन हुआ है, उन्होंने ये भी देखा है कि ये अब तक की जो रिसर्च हुई है जो कहता है कि भाई गार्लिक हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये अभी भी पूरा कंक्लूसिव नहीं है।
ओके,
अभी भी बहुत रिसर्च इसमें बाकी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति कोई प्याज और लहसुन खाता है तो उसका हार्ट प्रोटेक्टेड है या बाकी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है।
और मेरे ख्याल से अभी हार्ट की प्रॉब्लम्स ज्यादा है,
ज्यादा है पहले। जी, तो दूसरा और एक बहुत अच्छा रिसर्च जो है, जो कि डॉक्टर रॉबर्ट बेक करके एक वैज्ञानिक है, उसने किया, उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में
जी।
एक ये जो प्याज और लहसुन के ऊपर बहुत गहराई में इसके गया, इसमें काफी रिसर्च किया, और उसने पाया कि जैसे ये लहसुन प्याज शरीर में जाते हैं तो एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं सल्फोनिल हाइड्रोक्सिल आयन्स, ये रिलीज होते हैं। अब ये जो आयन्स है, ये जो केमिकल है, इसमें इतनी शक्ति होती है कि हमारे शरीर में एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, हर चीज जो हम खाते हैं ब्रेन में नहीं पहुंचती है, तो ये जो केमिकल है ये इस बैरियर को ब्रेक करके ब्रेन में जाता है और वहां पर कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है और उसके वजह से न्यूरॉन्स को बहुत हानि होती है। तो ये एक है। दूसरा और एक बहुत सारा इसमें जो रिएक्शन टाइम है, जो कि पायलट्स के ऊपर बहुत स्टडी हुई है, तो ऐसा बताया गया उसमें कि जो भी फ्लाइट के लिए आ रहे हैं पायलट अपनी ड्यूटी में, कम से कम 72 आवर्स वो लोग प्याज और लहसुन का सेवन ना करें, क्योंकि उनसे उसका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। तो अभी बहुत सारी इस तरह की रिसर्च और भी आ रही है कि जो हमको बताती है भाई, ये जैसे होम्योपैथी और इसमें भी कहा जाता है कि ये जो प्याज और लहसुन है उसमें सल्फर की मात्रा बहुत होती है, लैटेक्स की मात्रा बहुत होती है, जिसमें शरीर में बहुत सारे जैसे कि बीमारियां उत्पन्न हो सकती है।
जी जी,
तो जैसे मैंने कहा, फिर भी आपका जो सवाल है, ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी इसको खाना ही नहीं है, मैंने कहा ये परहेज है। अगर आप इसको नहीं खाते हैं तो आपको आप फायदेमंद है, अगर आप खाते हैं और फिर भी आप चाहते हैं आध्यात्मिक साधना भी करना चाहते हैं, साथ साथ ये भी करना चाहते हैं, तो ये तो जैसे लीकेज है, जबकि हमारा जो लक्ष्य है इस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे।
जी जी जी, तो दोस्तों भले ही लहसुन और प्याज शाकाहार में माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रीति से हमें डॉक्टर सचिन ने समझाया कि हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है ये, और अंततः हम भी तो मन की शांति के लिए ही प्रयास कर रहे हैं सभी। पर डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा यहाँ पर और है कि कई लोग ऐसे हैं मेरे परिचित में, और आपने भी समाज में देखे होंगे कि लहसुन प्याज का सेवन करते हैं वो, लेकिन मनोविकारों से दूर हैं और बड़े शांत चित्त।
जी, आपने बहुत सही बात कही कि उनमें ये विकार दिखते नहीं
जी,
परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें विकार है नहीं। अभी ये जो उनका जो स्वभाव है जो एकदम शांत है, उनमें कुछ दिव्य गुण हमको दिखाई देते हैं, ये हो भी सकता है कि उनके कुछ पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे उस वजह से ये है, ये भी हो सकता है कि जिस घर में उनका जन्म हुआ, जिस परिवेश में वो बड़े हुए, जिस तरह की माँ बाप ने उनको शिक्षा दी, उनका भी कुछ असर होता है। परंतु यहाँ हमारा लक्ष्य, हम जो कह रहे हैं कि प्याज और लहसुन नहीं खाओ, इसका कारण है कि विकारों को शांत करना
जी।
उनका स्वभाव भले शांत हो गया है, परंतु हो सकता है कि उनके अंदर भी वही विकारों का झंझावात चालू है। ये तो जरूरी नहीं है कि वो संपूर्ण क्रोध से मुक्त है, भले कभी बहुत ज्यादा समय वो क्रोध मुक्त रहते हैं, परंतु जो वासनाएं हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, जो बहुत ही गहरे तल पर काम करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लहसुन प्याज नहीं खाता है तो उसका स्वभाव एकदम क्रोधी होगा। हो सकता है कि वो भी बहुत शांत है, बहुत ही उनका सरल स्वभाव है, क्योंकि देखो खान पान के अतिरिक्त भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं,
कुछ दूसरे घटक
और बहुत सारे घटक है कि जो इसमें काम करते हैं, कि जैसे भाई आप क्या, आपका संग कौन सा है
जी,
आप क्या लिटरेचर पढ़ते हो, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका व्यवसाय क्या है, प्रोफेशन क्या है, ये सारी बहुत सारी बातें उसमें आती है। तो केवल हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये, और ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने प्याज लहसुन छोड़ दिया तो ये पूरे शांत हो गए, क्योंकि साधनाओं की भी तो आवश्यकता है।
हाँ जी,
हम जो है हमारे अंदर बचपन से न जाने कितने यहाँ वहां के संस्कार आ गए, इतना आवेश और क्रोध और ये सब आ गया, तो केवल प्याज लहसुन छोड़ दिया और हम शांत हो गए, अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, और क्योंकि ये पथ तो बहुत लंबा पथ है, अध्यात्म का राह है ये, इसमें केवल एक घटक काम नहीं करता है, इसमें बहुत सारी चीजें क्यूमुलेटिव इफेक्ट, कि हमको बहुत सारी धारणाओं को अपनाना पड़ेगा, तब कहीं जाके मन शांत होगा। जैसे आपने सुना होगा कोई, कई लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, योग नहीं लगता, मेडिटेशन नहीं कर सकते, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, यहाँ तो ये बहुत सारी धारणाओं को जब अपनाओगे तब कहीं मन शांत होगा
जी। और खान पान की धारणा उसमें से एक है,
एक है जी।
तो दोस्तों जब यहाँ प्यूरिफिकेशन की बात हो रही है, शुद्धिकरण की बात हो रही है, तो खान पान उसमें एक अहम रोल अदा करता है, ये हमें डॉक्टर सचिन से बातचीत में पता चल रहा है। और लहसुन प्याज या जो भी तामसिक भोजन है, ये कहीं ना कहीं मनोविकारों को बढ़ावा देते हैं, तो इन्हें छोड़ना तो उचित ही रहेगा। और ये बात अब हमें पूरी तरह से समझ आ रही है। डॉक्टर सचिन, खान पान संबंधित कुछ और प्रश्न है जो हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं।
नमस्कार जी, मैं भूप सिंह हरियाणा से। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप कहीं ब्याह शादी या त्योहार पर किसी घर जाते हैं, वहाँ कुछ खाते नहीं है, इसे अगले को बुरा लगता होगा, क्या यह आपका व्यवहार उचित है?
डॉक्टर साहब, एक बात और ऐड करना चाहूंगा इनके प्रश्न में। मैं ये भी सुना है मैंने कि आप या संस्था से जुड़े हुए लोग किसी और के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाते है, ये क्या कारण है?
देखिए, इस बात का उत्तर मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि आपके घर यदि कोई मेहमान आया
जी,
उसको डायबिटीज की बीमारी है
जी,
और उसको डॉक्टर ने कह रखा है कि भाई आपको मिठाई नहीं खानी है जी, और आपने उसके लिए खास मिठाई बनाई है
जी,
तो वो आपके घर जब आता है और मना करता है तो आपको बुरा लगता है?
आपकी तरफ से नहीं जीतता है,
क्योंकि देखिए उसको वो तो कहता है कि भाई मैं तो खा सकता हूं, पर डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए। तो उसी तरह देखो, जब भी हम किसी एक मार्ग पर निकल पड़ते हैं तो वहां पे कुछ धारणाएं होती है, कुछ वहां के नियम होते हैं, कुछ दृढ़ता स्वयं में लानी पड़ती है। तो इस संस्था की भी अन्य एक मुख्य धारणा है, जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले कह रहा था कि अन्न के तीन प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें हमने जाति दोष तो देख लिया कि जिसमें राजसिक, सात्विक और तामसिक। एक दूसरे प्रकार का भी दोष है अन्न का, जिसे कहा जाता है आश्रय दोष। अभी ये जो दोष है इसमें ऐसा है कि जो व्यक्ति जो पैसा आ रहा है, किस कमाई से ये पैसा आ रहा है, उसका भी, जैसे किस प्रोफेशन से, मतलब कोई दो नंबर की कमाई कर रहा है, कोई और दूसरा गलत काम कर रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, उस तरह से वो पैसा है और उससे वो भोजन बनाया जा रहा है, तो जो व्यक्ति वो अन्न खाएगा उस पर प्रभाव पड़ेगा
जी।
ये आश्रय दोष में तो ये एक बात है। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है, मैं हूं सपोज, और मैं किसी दूसरे पर आश्रित हूं, और वो जो व्यक्ति कमाता है वो अनैतिक तरीके से कमाता है
जी,
और वही अन्न मैं खाता, तो उसका भी मुझ पर प्रभाव पड़ेगा। और इसी में आश्रय दोष में एक तीसरी एक बात है कि किस मनस्थिति में व्यक्ति भोजन बना रहा है, मतलब व्यक्ति जो भोजन बना रहा है उसके मन के वाइब्रेशंस भी उस भोजन में जाते हैं, और वही वाइब्रेशंस खाने वाले के मन पर प्रभाव करते हैं। और तीसरा जो दोष है वो होता है निमित्त दोष, मतलब कितना साफ सुथरा हो, रसोई कितनी साफ सुथरी हो। आप देखो कि एक जमाने में जो लोग भोजन बनाते थे उनको महाराज कहा जाता था, आपने सुना होगा महाराज आए हैं। तो ये महाराज अर्थात क्या, महाराज अर्थात वो जिसका अपनी कर्मेंद्रिया जिसकी वश में हो।
क्या बात,
तो इसीलिए उसको महाराज कहा जा सकता। और ये जो महाराज थे वो जब रसोई घर में जाते थे तो वो एक ऐसा वस्त्र पहनते थे जो कि सिला हुआ ना हो, वो एक स्पेशल उनका क्लॉथ होता था उसके लिए, भोजन बनाने के लिए। और एक बार वो किचन में चला गया कि वापस वहां से बाहर नहीं आता था जब तक कि भोजन पूरा ना हो जाए। मतलब ये है कि साफ सुथरा। और दूसरा, आपने कुछ ऐसे संप्रदाय भी सुने होंगे जैसे वल्लभाचार्य का संप्रदाय है, जैसे रामानुजाचार्य का संप्रदाय, उसमें एक शब्द आता है स्वयं पाक
जी।
मराठी में कहते हैं स्वयं पाक, अर्थात रसोई को ये दूसरा शब्द है स्वयं पाक। पाक मतलब भोजन, पाक शास्त्र मतलब भोजन बनाने का जो शास्त्र है। स्वयं पाक अर्थात स्वयं पाकी, सेल्फ कुक
जी,
मतलब जो खुद अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो ये धारणाएं तो हमारे भारतीय संस्कृति में कब से चालू है कि इन सभी जो दोष मैंने बताया उसका मन पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है। अभी आपने जो बात कही कि भाई हम लोग बाहर का नहीं खाते, अगर वैज्ञानिक तरीकों से भी देखा गया इसका, तो देखो बाहर का जो भोजन है, बाहर का जो होटल्स में है, उसमें न जाने कितने कौन से केमिकल्स है, कौन सा पानी उसमें यूज किया गया, और कितनी बीमारियां उससे होती है बाहर का। और ये भी है कि जैसे भोजन बनाने वाला जो व्यक्ति है, अगर योगी है, कोई पवित्र है, शुद्ध विचारों वाला है, आप देखोगे कि आपके पास अगर तीन प्रकार के अन्न रखे गए, एक है मंदिर का प्रसाद
जी,
एक है घर का बना हुआ, और एक है हलवाई की दुकान का, तो आप इसमें अंतर बता सकते हैं कि जो मंदिर का भोजन है कौन सा अच्छा है, वही अच्छा है। क्यों? क्योंकि बड़ी श्रेष्ठ भावनाएं उसके साथ बनी हुई है। अच्छा, दूसरे नंबर पर अच्छा है घर का है, क्योंकि माँ ने बनाया है, अपने बच्चों के लिए बनाया। और जो हलवाई का बनाया वो भोजन है, जो मिठाई है, उसमें क्या है? प्रॉफिट, वही देख रहे हैं ना, उसका इंटेंशन क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ मैटर करती है। तो इस संस्था में जो मुख्य धारणा है भोजन की, उसी व्यक्ति के हाथ का भोजन खाए जो कुछ धारणा वाला है, जो इस पथ पर निकल चुका है, जिसने प्यूरिफिकेशन को अपना लक्ष्य बनाया है, राजयोग की जो साधनाएं कर रहा है, जिसका चित्त शांत हो गया है, मन पवित्र हो गया है, और परमात्मा की याद में बना रहा है, सबसे मुख्य बात तो
क्या था?
और जैसे मैंने कहा, एक आपने सुना होगा रसोई को चौका भी कहा जाता है भारतीय संस्कृति में। तो चौका मतलब कुछ चार बातें, तो यही बातें कुछ घुमा के यहां आती है कि भाई ये भोजन किस पैसे से बन रहा है
जी,
भोजन में अपने आप में कुछ जाति दोष तो नहीं है, कौन से प्रकार का भोजन है वो, तीसरा जो बना रहा है उसकी मनस्थिति क्या है, और चौथा जो खा रहा है उसकी मनस्थिति क्या है। मतलब भोजन बनाने के लिए, जैसे गीता में भी लिखा है कि जो भोजन बिना अर्पण किए खाता है वो तो जैसे चोर है
जी, जी, जी।
तो अगर हम अर्पण भी करते, अभी देखो भगवान तो अभोक्ता है, अर्पण हमको हमारी भावनाएं करनी है, भोजन तो एक निमित्त है। तो इस तरह से ये सारी बातों को अगर मिलाया जाए तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर इसमें आ जाता है।
जी जी जी, मैं समझता हूँ डॉक्टर सचिन ने जिन उदाहरणों के माध्यम से हमें इस बात की स्पष्टता दी है, हम समझ सकते हैं कि इसमें अपमानित महसूस करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये धारणाओं की बात है, ये परहेज की बात है। अगर दर्शक कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हो इसी से संबंधित तो पूछ सकते हैं।
मैं प्रयागराज बेंगलोर से हूँ, मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूँ और मुझे हॉस्टल का खाना खाना पड़ता है, क्या मैं इस तरह से इस संस्था में जुड़ सकता हूँ?
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भाई जी ने। पहले तो मैं इनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये हॉस्टल में रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और साथ साथ अध्यात्म में भी रुझान है इनके जीवन में, तो ये बात के लिए तो मैं आपको मानता हूँ। परंतु आपने जो बात, जो मुद्दा उठाया है कि स्टूडेंट लाइफ में क्या किया जाए
जी,
भोजन के बारे में
जी,
तो देखिए स्टूडेंट लाइफ का मेन उद्देश्य तो पढ़ाई होती है, और जो भी पढ़ाई है उसमें कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और समय भी बहुत कम होता है इनके पास, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी होती है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं खुद अपना भोजन बनाऊं तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी
जी,
तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति को देखे इस तरह का भोजन, एक तो सबसे बेस्ट तो मैंने जैसे कहा कि खुद बनाए या किसी ऐसे व्यक्ति से ले कि जो योगी हो, जो पवित्र हो, जो पवित्र जीवन की जिसमें सारी धारणाएं हो, पर ये, परंतु किसी कारणवश आपको ये नहीं मिल रहे हैं इस तरह के लोग,
हाँ जी।
तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं, मांस मटन ये सब चीजें नहीं खाती, मतलब तामसिक गुणों से वो मुक्त है, तो अगर ऐसी कोई आपको माता मिल जाए जो आपके लिए भोजन बना सके, आपको टिफिन दे सके
जी, जी,
तो आप जरूर इस तरह के प्रयत्न कर सकते हैं
जी।
या फिर आपकी ही जो हॉस्टल का जो किचन होगा वहीं पर आप उनको कह सकते हैं कि आपके लिए थोड़ा अलग भोजन बना दे कि जिसमें भाई वो प्याज लहसुन न डाले। अगर आपको कोई माता ऐसी नहीं मिल रही है तो वही आपका जो हॉस्टल का ही जो कैंटीन है उसी से थोड़ा आप भले उसको थोड़ा अलग से पैसा देना हो वो दे के आप अलग अपने लिए अलग बना सकते हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि जो भोजन की थाली आपके सामने आती है पहले तो उसको परमात्मा को अर्पण करें, दूसरा बड़े ही उसके लिए जैसे हम शुक्रगुजार रहे भगवान के कि भगवान ने हमें ये भोजन दिया,
हाँ जी।
और अपनी ही जैसे हम अपने ही सोमान में स्थित हो जाए, जैसे कि हम संकल्प करें कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ,
हाँ
मेरे नैनों से, भ्रुकुटी से, दृष्टि से पवित्रता के वाइब्रेशंस इस अन्न में जा रहे हैं, और भोजन करते हुए बड़े मौन और शांत चित्त होकर भोजन करें, और भोजन करते करते इस तरह के संकल्प करें कि ये भोजन मेरे शरीर में जा रहा है और मेरे मुझे स्वस्थ कर रहा है, मेरे मन को शांत शीतल कर रहा है
जी।
तो इस तरह से भी आप मतलब इनकी जिस प्रकार की समस्या है
उन परिस्थितियों में ये अपने आप को
एडजस्ट कर सकते हैं।
और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, ऐसी परिस्थितियों में भी कम से कम तामसिक भोजन को पूरी तरह से अवॉइड करके, अंडा मांस मछली इत्यादि को हटा करके दरकिनार करके सात्विक भोजन की व्यवस्था किसी प्रकार से भी की जा सकती है, और उसके शुद्धिकरण की प्रोसेस भी आपने बता दी। और मैं समझता हूं कि सैनिक, खिलाड़ी, पुलिस, इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग भी इस विधि को अपना सकते हैं।
हाँ जी, जैसे इंग्लिश में भी एक कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर जहां चाह है वहां राह है। अगर कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले तो जो चाहे वो पा सकता है। और जिस प्रकार के आपने प्रोफेशंस बताए, इस तरह के कई सारे प्रोफेशंस के लोग हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इसी तरह की समस्या आती है। परंतु जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होता है तो हम कुछ ना कुछ करके मार्ग हमारे सामने आ ही जाता है।
जी जी, जी।
तो ये तो बस हमारे संकल्पों की बात है, हमारे दृढ़ संकल्प की बात है।
जी, और संस्था का ही स्लोगन है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी,
दृढ़ता ही सफलता की,
वो बड़ा अच्छा लगता
जी,
है।
जी जी,
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका डॉक्टर सचिन। बड़े ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक धार्मिक पहलुओं को बताते हुए आपने विस्तार पूर्वक संतोषजनक हमें उत्तर दिए, और खान पान की धारणाओं से संबंधित जो भी दिक्कतें हमें आती थी, जो भी दुविधाएं हमें थी, उनका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं इस संस्था से जुड़ने में हमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, खान पान हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। खान पान से संबंधित काफी सारी दुविधाएं हमारे मन में थी। हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, तो सात्विक अन्न तो अपनाना ही होगा, और तब तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है जब हमने सात्विक भोजन को अपनाने के सारे गुण समझ लिए हों और तामसिक भोजन के सारे दोष हमारी समझ में आ गए हों। आज के इस कार्यक्रम के जरिए हमने खानपान के संबंधित विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और धारणाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल, नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365।